SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। 18वीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 65.5% मतदान हुआ, जो 2019 की तुलना में 4.5% कम रहा। मतदाताओं, खासकर युवाओं में उदासीनता दिखी। पहले चरण के मतदान में सत्तारूढ़ NDA गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन अलग अलग मायने खोज रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता इसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में आई भारी कमी बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा में इसे भाजपा की विदाई की शुरुआत बताया।
बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस से वो डरे हुए हैं। बताओ, डरे हुए कि नहीं डरे हुए? ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। तो जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, उनको सुनना नहीं चाह रही है, उनके झूठ से लोग परेशान हो गए, तंग हो चुके हैं।
मगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रथम चरण में लोगों ने भाजपा को एक तरफा वोट दिया है।
कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में NDA के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, NDA जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जो लोग मतदान नहीं कर रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है। आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें।
दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों के लिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के धुआंधार प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। उनके चुनाव प्रचार में अब कांग्रेस के खिलाफ कुछ अधिक कटुता नजर आने लगी है। रविवार को राजस्थान की चुनावी सभा में उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कई बातें कहीं, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा।
पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे, जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाबी हमला कर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री पद की मर्यादा रखने और झूठ ना बोलने की नसीहत दी।
एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे, अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोसकर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ, उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है? आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए।
विपक्षी दल चुनाव आयोग पर भाजपा की कठपुतली बन पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना UBT के मुखिया उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग द्वारा उनकी पार्टी के नारे जय भवानी जय शिवाजी पर रोक लगाने के नोटिस को दरकिनार करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी भाजपा नेताओं द्वारा भगवान राम और हनुमान के नाम का लगातार इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग क्यों चुप है।
पंतप्रधान असं म्हणालेले आहेत की बजरंग बली की जय बोलून तुम्ही बटन दाबा। अमित शाह म्हणाले की तुम्ही आम्हाला मत द्या, आम्ही तुम्हाला रामलल्लाचं दर्शन घडू। आम्ही सुद्धा राम भक्त आहोत, आम्ही सुद्धा हनुमान भक्त आहोत। महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये आई तुळजा भवानी हे महाराष्ट्राचं कुलदैवत आहे, ज्या तुळजा भवानीने छत्रपती शिवाजी महाराजांना आशीर्वाद दिले। जय भवानी जय शिवाजी ही घोषणा ही जनतेच्या हृदयामध्ये आहे, अगदी महाराष्ट्राच्या कडे कपारीत, काना कोपऱ्यात, गल्ली बोळात सगळीकडे जय भवानी जय शिवाजी ही घोषणा आहे। आणि मी आपल्याला आठवण करून देतो की निवडणूक आयोगाला आम्ही त्यावेळेला हेही सांगितलं होतं आपल्याच माध्यमातून की जर हे त्यांना तुम्ही परमिशन त्यांना देत असाल तर मग उद्या आम्ही हर हर महादेव बोललो किंवा जय भवानी जय शिवाजी ते आम्ही बोलणार असते, कोणी थांबवू शकत नाही, तर तुमचा आक्षेप असता कामा नये।
संसार के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति टेस्ला और SpaceX के CEO एलॉन मस्क ने अपनी 21-22 अप्रैल की 2 दिवसीय भारत यात्रा टाल दी है। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया ऐप एक्स पर भारत आने से केवल 1 दिन पहले दी। श्री मस्क ने कहा, दुर्भाग्य से बहुत भारी टेस्ला दायित्वों के कारण भारत की यात्रा में देरी हुई, लेकिन मैं इस साल के अंत में यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूँ। विपक्षी दल इस घटनाक्रम को सत्ता बदलने के संकेत के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में चुटकी लेते हुए लिखा, यह अजीब ही था कि एलॉन मस्क एक सेवा मुक्त होने जा रहे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भारत आ रहे थे। उन्होंने भी अब दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली है और अपनी यात्रा स्थगित करने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन के निर्वाचित प्रधानमंत्री जल्द ही उनका स्वागत करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ावा देगी। मैं स्वयं इसका उपयोग करता हूँ। श्री मस्क द्वारा यात्रा स्थगित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहमदाबाद में कहा कि भारत यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ बना रहा है कि बड़ी कंपनियाँ निवेश के लिए भारत की ओर आकर्षित हों, खासकर उन कंपनियों के लिए जो चीन की नीतियों को लेकर चिंतित हैं। और अब समाचार खेल जगत से। भारत के 17-वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने टोरंटो में आयोजित कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा है। वे 40 साल पहले महान गैरी कैस्परोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विश्व खिताब के लिए सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए हैं। गुकेश 14वें और अंतिम राउंड में अमेरिकी हिकारू नाकामूरा के साथ बाजी ड्रॉ करते हुए 14 में से 9 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। अब चेन्नई के गुकेश मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को साल के आखिर में चुनौती दे सकेंगे। यदि वे लिरेन को हराते हैं तो दुनिया के सबसे छोटी उम्र के विश्व चैंपियन बन जाएंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली महिला पहलवान विनेश फोगट ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 29 वर्षीय विनेश ने एशियाई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में कजाकिस्तान की लॉरा गनिकीजी को 50 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में 10-0 से हराया। इस मुकाबले के लिए उन्हें अपना वजन 59 किलो से कम करके 50 किलो करना पड़ा, जो एक बेहद मुश्किल काम था। लंबे धरना प्रदर्शन के चलते वे कुश्ती पर भी ध्यान नहीं दे पाई थीं। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.